Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhadram Karne Vishunuyama Devaha भद्रं पश्ये माक्षभैर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ सहनावतु सहनौ दुरक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः
हरिः ॐ
मन्त्रपाठ माण्डुक्योपनिषत् यत्र सुप्तो
न कञ्चन कामम्
कामयते
न कञ्चन
स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थानः एकीभूतः प्रज्ञानगणः एवानन्दमयः हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः
आत्मज्ञान तत्वज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान। हमारी जो तीन अवस्थाएं हैं, हमारे अनुभव की जो तीन अवस्थाएं हैं, जिसके साथ अब तक का मेरा अनुभव क्या है जीवन का, ये तीन अवस्थाओं का मेरा अनुभव है। पर ये तीनों अवस्था में, अवस्था तो अनुभव है पर और किसका अनुभव होता है? तो भाई तत्व का रूप है, तत्व का जो स्वरूप है, तत्व के स्वरूप का ज्ञान का भी यहां अभाव है। ज्ञान किसका है, ख्याल किसका है, अनुभव तीन अवस्था का है, पर इन तीनों अवस्थाओं में तत्व के ज्ञान का अभाव है। और तत्व के ज्ञान का अभाव होने के कारण ये विशेष ज्ञान से, श्रुति से, उपनिषद से, गुरुजनों से बोध पा करके ही ये तीनों अवस्था में वो परमात्मा का ज्ञान पाया जाता है। जागृत अवस्था में कैसे पाया गया? तो भाई 19 मुख वाला दृष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता होके भाई इस प्रकार परमात्मा जागृत में अभिव्यक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जागृत में जो तत्व ज्ञान की अभाव अवस्था थी, न जानना था, हमने जाना, पर वो हमने क्या जाना? ब्रह्म का एक चौथाई भाग जाना, ठीक है। एक चौथाई रूप में जागृत अवस्था में क्या हो रहा है वो हमने जान लिया, यानी दर्शन अवस्था जो है, दर्शन अवस्था यानी जागृत अवस्था, दर्शन अवस्था में जो ज्ञान का अभाव था वो अब नहीं रहा। पर उससे आत्म साक्षात्कार हो गया? नहीं भाई, आत्म साक्षात्कार तो उससे नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक चौथाई ही जाना है, इसीलिए स्वप्न अवस्था में बात की कि भाई स्वप्न अवस्था में क्या हो रहा है, तो भाई स्वप्न अवस्था में स्वेन मात्रम अपादाय, वो जागृत अवस्था की मात्राएं संस्कार जिसके बारे में हमने बात कर ली है, वो संस्कार लेके वो परमात्मा अपने ही आप सब निर्माण करते हैं, तोड़ते हैं, नया बनाते हैं और कर्मों फल का भोग जो मन की शक्ति से होता है, वो शक्ति का स्रोत जो है वो सूक्ष्म जो है, यानी कहना क्या है कि स्वप्न की अदर्शन अवस्था में जो विविध भोग जो है वो भोग का स्रोत स्रोत जो है, शक्ति जो है वो परमात्मा की ही है। स्थूल भोग भी परमात्मा के जरिए ही हो सकते हैं, सूक्ष्म भोग जो है वो भी परमात्मा के जरिए ही हो सकते हैं। तो ये आपने क्या जाना ब्रह्म के बारे में? दो भाग जाने, एक चौथाई प्लस एक चौथाई, तो आधा हो गया, 1.5, 50% आपने ब्रह्म को जान लिया। पर भाई इतना जान लेने से भी काफी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में भी, क्योंकि अवस्था देखो तीनों में क्यों जानना है भाई, आप कह सकेंगे तीनों में क्यों जानना है, क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं का अनुभव मुझे है और ये तीनों अवस्थाओं में मैं कह रहा हूं कि मुझे ये अज्ञान है। मैं कैसे कह रहा हूं कि मुझे अज्ञान है? जब जागृत अवस्था में एक क्षण के लिए भी हम कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, एक क्षण के लिए भी मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं, ऐसा एक क्षण के लिए भी अभिमान हो गया तो क्या होता है? तो ये अभिमान से जागृत अवस्था में वो अज्ञान है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न के पात्र को सच मानते हैं। कब सच मानते हैं? भाई उठने के बाद तो हम स्वप्न के पात्र को सच नहीं मानते हैं, पर स्वप्न अवस्था के दरमियान, स्वप्न अवस्था के दरमियान कोई सुखद प्रसंग हुआ तो अच्छा लगा, कोई दुखद प्रसंग हुआ तो हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं दुखी था। स्वप्न में कई लोग रोते हैं, डर जाते हैं, पसीना आ जाता है। तो स्वप्न अवस्था के दरमियान भी क्या हुआ? भाई मैं दुखी सुखी होने वाला मन हूं, ऐसा है वहां, ऐसा हम कहते हैं, हमारा अनुभव है कि मैं मन हूं, यह अध्यास वहां है। इसीलिए मन में भी वो परमात्मा को जानना जरूरी है। और सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में तो प्रचुर अज्ञान है। सुषुप्ति अवस्था जब आप जाग जाते हैं, नींद से उठते हैं, तो क्या कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, अब आपका असली तो इसमें क्या गलत क्या हुआ? आपने कुछ नहीं जाना तो सच बात है, मैंने हकीकत में कुछ नहीं जाना तो इसमें गलत क्या है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये आपके स्वभाव से विपरीत है। आपका स्वभाव क्या है? तो भाई सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है, वो आपका स्वभाव है। और परमात्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओहो, इस काल का नहीं, तीनों काल का भी उसके पास ज्ञान है, काल का भी जो कारण है। और हम क्या कहते हैं, हमारा स्टेटमेंट क्या है? मैंने कुछ भी नहीं जाना, मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या कुछ नहीं जानता? ये अभाव का जो कारण है उसको भी मैं नहीं जानता हूँ। तो इसीलिए सुषुप्ति में अब वो परमात्मा किस प्रकार अभिव्यक्त हो रहे हैं, वो सुषुप्ति में भी वही परमात्मा को पकड़ा तो क्या हो गया? 1/3 आपने परमात्मा को जान लिया, पर यह भी पूर्ण नहीं जाना है, चौथा जानना बाकी है, तुरीय जानना बाकी है। पर तुरीय परमात्मा जो है वो कैसे डिराइव करेंगे? तो जागृत में जो परमात्मा जिस प्रकार झुमपुरण कर रहे हैं सत्ता स्फूर्ति देके, वही परमात्मा मन बन के सूक्ष्म भोग कर रहे हैं, और वही परमात्मा सुषुप्ति अवस्था में क्या रह कर रहे हैं वो देख के, वो तीनों जो अवस्था का ज्ञान है, वो तीनों अवस्था को परमात्मा के बारे में जो भी ज्ञान दिया गया है वो बात अलग करके, अलग तारण करके, अन्वेषण करके, वो जो चौथा विचार जो है कि ये परमात्मा है, वो हमारी चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था। ये तीनों अवस्थाओं में से वो आत्मा का, ब्रह्म का जो कॉमन फैक्टर है, वो विचार की अवस्था, वो विचार को डिराइव कर लिया, विचार को अलग निकाल लिया, तो ये विचार रूप ही तुरीय अवस्था है। कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसका अलग से ये चौथा अनुभव होगा। ये तीनों अवस्थाओं में, क्योंकि आत्मा क्या है, ये अवस्थाएं क्या है, अवस्थाएं परिवर्तनशील है, आने जाने वाली है, देश और काल से बद्ध है। पर तुरीय परमात्मा क्या है? तुरीय परमात्मा देश और काल से बद्ध नहीं है। मतलब क्या हुआ? सर्वदेशीय है, सर्व काल में है। अगर सर्व काल में है तो मेरी जागृत अवस्था दरमियान भी वो तो है ही, स्वप्न दरमियान भी है ही, सुषुप्ति दरमियान भी है ही। तो अब सुषुप्ति में वो परमात्मा किस प्रकार जुगवन कर रहे हैं वो हमें अभी बताने वाले हैं पांचवें श्लोक से। कल हमने उसका पहला जो पद था उसके ऊपर विचार किया था, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। ये सुषुप्ति अवस्था का एकदम लिटरल ट्रांसलेशन, एकदम सरलतर जो मेरा और आपका निजी रोज का अनुभव है उसी के बारे में। देखिए ये बहुत सरल है उपनिषद। न कंचन कामम, वहां कोई भी प्रकार की वासना या इच्छा नहीं होती, इतना ही है। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न देखता है, यानी सूक्ष्म संस्कार भी नहीं है। क्या नहीं है वो देख लीजिए, उसे सुषुप्ति कहते हैं। अब सुषुप्ति स्थान जो है इसे तो सुषुप्ति कहते हैं, हम सबको पता है कि वहां भोग नहीं होता है तो क्या होता है तो अब उसका विश्लेषण करके कहते हैं कि सुषुप्ति स्थान एकीभूत, वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ। एकीभूत शब्द है, ये एकीभूत शब्द है यानी क्या? तो बोले कि जितने स्थूल पदार्थ है जागृत अवस्था के, एकीभूत यानी एक होना है, तो कुछ एक हो रहा है, बहुत सारा है और एक हो रहा है, घन स्वरूप ले रहा है। तो क्या घन स्वरूप ले रहा है? मटेरियल तो चाहिए ही ना। सुषुप्ति में अगर काम नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी भोग नहीं है, तो एकीभूत सुषुप्ति के बाहर की अवस्था का ही हो सकता है। उसके भीतर तो आ जाने के बाद, एक बार सुषुप्ति शुरू हो जाने के बाद एकीभूत नहीं होता है। जब एकीभूत होता है उसको सुषुप्ति कहते हैं। तो कुछ जागृत और कुछ स्वप्न का ही हो सकेगा। तो बोले हाँ, एकीभूत क्या होता है? तो जागृत के जितने भी संस्कार है, जितने भी नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच है, इंद्रिय गम्य जितने विषय है वो, और स्वप्न अवस्था के जितने भी विषय है। स्वप्न अवस्था का विषय क्या है? विचार मात्र, संकल्प विकल्प, वासनाएं जो है, सूक्ष्म भोग जो है, वो सब एकीभूत होते हैं। भाई एकीभूत हो जाते हैं यानी क्या? सब कुछ सुषुप्ति में जाने के सब मिल जाता है। मिक्सचर में सब आप अलग अलग तरह के पकवान डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं और कॉकटेल हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है क्या? हकीकत में मिक्स होता है? तो बोले नहीं हो जाता। तो ये एकीभूत कैसा है? तो देखिए, अब ये कमरा है, रात हो जाती है, बाहर की भी सब लाइट्स ऑफ है, अमावस की रात्रि है, यहाँ भी आप लाइट नहीं करते और आप यहाँ हम बैठे हैं। तो हमारे जितने शरीर के अंग है, अभी ये अलग अलग है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, एक पैर है, दूसरा पैर है, दो आंखें हैं, डिस्टिंक्ट दिख रहा है, हम एक एक करके भी अलग 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 गिन सकते हैं। पर अंधेरी जब रात है तब क्या होगा? हमारा पूरा जो शरीर है, शरीर के जितने भी अवयव है, वो क्या हो जाएंगे? वो एक ही शेप के दिखेंगे। एक ही भूत होना यानी क्या है? तो क्या अंधेरे में शरीर पिघल जाता है? हाँ, एक गठ्ठा ऐसा घन हो जाता है? नहीं होता। पर अंधेरे की असर ऐसी है कि एक ही भूत जाने हो गया ऐसा लगता है। एक ही भूत हो गया यानी नाउ यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये दाईं आंख है, ये बाईं आंख है, ऐसा आप अब निर्देश नहीं कर सकते। ये एक ही भूत हो गया। अच्छा, आप जब अंधेरे में बैठे हैं, शरीर बैठा है, कोई भी प्रकार का कर्म नहीं हो रहा, मुख से आप बोल नहीं रहे, इशारा करते हैं तो भी किसी को दिखेगा नहीं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मुख के ऊपर अगर भय के निशानी है तो भी नहीं दिखेगी। अगर आप प्रसन्न है अंधेरे में तो भी वो दिख नहीं सकता है। मन के भाव भी क्या हो गए हैं वहाँ? मन के भाव भी वहाँ एकीभूत हो गए हैं। यानी मन के जितने विचार है वो सब मिक्स हो जाते हैं। हम क्या इमेजिन करते हैं? कि भाई सुषुप्ति अवस्था में तो सब एकीभूत यानी मिक्स हो जाता होगा और सुबह फिर से कुछ रचता होगा, ऐसा नहीं है। अंधेरे में जैसे पदार्थ के अलग अलग विभाग एकीभूत हो जाते हैं, ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, ये जागृत के जितने पदार्थ है, ये स्वप्न के जितने पदार्थ है, उसको हम पहचानते नहीं है। ये उसका एकीभूत होना है, उसकी पहचान नहीं होती है, उसका जो ज्ञान जो है उसका ज्ञान एकीभूत हो जाता है। उसका ज्ञान एकीभूत हो गया, एक ही पूरी जागृत अवस्था जो है उसका जो ज्ञान, उसकी जो ज्ञप्ति, जागृत अवस्था में कोई ज्ञान या ज्ञप्ति क्या है, हमने आपको बता दिया था। ज्ञान स्वरूप कौन है, सत्ता स्फूर्ति स्वरूप जागृत में कौन है, तो बोले आंख कैसी है, आंख जड़ है, रूप कैसा है, रूप भी जड़ है, देश काल से बद्ध है, पर आंख रूप को जिस शक्ति से देख रही है वो क्या है, वो चेतन है, वो ज्ञप्ति है, वो ज्ञान है। वही दृष्टा, वही श्रोता बनता है, मन्ता बनता है, विज्ञाता बनता है। तो ये जितने जितने ज्ञान है जागृत अवस्था में वो एक ही भूत घनीभूत हो जाते हैं, और बचता क्या है, सिर्फ जानना, सिर्फ ज्ञप्ति बचती है। इसलिए इसके बाद तुरंत ही एक ही भूत समझाने के बाद तुरंत ही उपनिषद ने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, प्रज्ञान घन। एक ही भूत हो गया पर प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन यानी एक ही भूत होने के बाद रह क्या जाता है, बच क्या जाता है। जैसे आपका काला जो रूप है वो बच जाता है, एकीभूत हुआ हुआ कुछ तो बच जाता है। ऐसे जब जागृत अवस्था हमारी एकीभूत हो जाती है, स्वप्नावस्था एकीभूत हो जाती है, तो जागृत अवस्था में एक ज्ञान ज्ञप्ति ही मात्र, सत्ता और स्फुरण ही मात्र बचता है, भोग बचते नहीं है। क्योंकि भोग करने वाली इंद्रियां अब एक एक करके अलग अलग नहीं दिखती है, भोग नहीं है, पर भोग की जो सत्ता है वो कभी तिरोभूत नहीं होती, वो प्रज्ञान है। पर प्रज्ञान घन कैसे बनता है, घन यानी दो तीन जितना भी होता है वो सब एक हो जाना, उसे घनीभूत कहते हैं। जैसे आपका डायमंड है, कार्बन जो है वो क्या है, वो एकदम घनीभूत है, एकदम घन स्वरूप है, वेरी मच सॉलिड। उससे सॉलिड कोई पदार्थ अब तक नहीं शोधा गया, एकदम सॉलिड है, उसके भीतर अब एक भी मॉलिक्यूल जा नहीं सकता। तो घन स्वरूप होने के लिए दो तीन चीजें चाहिए। तो ये जो, और दूसरी एक बात है, ये कार्बन है, ये डायमंड है, वो कार्बन के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल डालू तो वो घनीभूत हो सकेगा, क्यों नहीं हो सकेगा। दूसरा कार्बन ही चाहिए, दूसरा एटम भी कार्बन ही चाहिए, तीसरा ही कार्बन ही चाहिए, तीसरा ऑक्सीजन डालू तो नहीं होगा, गैस बन जाएगा, नहीं होगा, CO2 हो जाएगा। तो क्या है, घनीभूत होने के लिए बराबर ये समझ लीजिए, प्रज्ञान घन कह दिया है, घनीभूत होने के लिए क्या चाहिए, भाई उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो गुण है वो एक ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो घनीभूत नहीं हो सकेगा। तो यहाँ एक कौन है, जागृत अवस्था में जो ज्ञप्ति, जो चेतन है, और उसके साथ घनीभूत किसका होने वाला है, स्वप्न अवस्था में भी वो जो परमात्मा है, स्वप्न अवस्था के सूक्ष्म भोग जो है, वासनाएं जो है, वो ये सत्ता और स्फूर्ति होने वाली जो ग्रप्ति है, चेतना है जागृत अवस्था में, जिसके जरिए ये आप सब देख रहे हैं, उसको मिक्स कर दीजिए, हो सकेगा एकीकरण। भाई वासनाएं कैसी है, वासनाएं तो आकार और नाम की होती है, हा? वो जन्म और मरण धर्म होती है, देश काल से बद्ध होती है। अब इसके साथ एकीभूत हो करिए तो बोले नहीं होता है, तो स्वप्न के सूक्ष्म पदार्थ भोग को छोड़ दीजिए, स्वप्न के मन को, वासनाओं को छोड़ दीजिए, तो एकीभूत स्वप्न अवस्था में किसका होगा, तो भाई एकीभूत वो जो स्वयं प्रकाश, जो ज्योति है, जो मन को सब संस्कारों से जो बद्ध है, वो मन को प्रेरित करती है, जो ज्ञप्ति, जो चेतना प्रेरित करती है स्वप्न अवस्था को जगाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, स्वप्न सृष्टि रचने के लिए जो शक्ति, जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है वही जागृत अवस्था के चेतन के साथ एकीभूत हो सकेगा। ये प्रज्ञान घन दो आ गए, पर यहाँ जो प्रज्ञान घन यानि तीन कुछ चाहिए, घन यानि घन स्वरूप यानि तीन चाहिए। स्क्वायर और क्यूब पता है ना आपको, कि यहाँ तो तीसरा भी कुछ है, ये तीसरा, ये तीन एक हो गए तब भी प्रज्ञान घन कह सकते हैं। अब तीसरा कोई मॉलिक्यूल होगा, तीसरा कुछ ज्वाइन करना होगा तो उसके ही स्वभाव का होगा या विपरीत होगा? उसके ही स्वभाव का होगा। यानी इससे एक बात तो तय हो गई कि तीनों अवस्था में कोई एक ही देव घूम रहा है। इतना भी आप मन में इतना ज्ञान लेके जाएंगे तो पर्याप्त है कि तीनों अवस्थाओं को चलाने वाला कोई एक ही है, देयर इज ओनली वन लीडर। वो कैसा है तो उसकी बात हमने कर ली है। अब जो तीसरा जो है सुषुप्ति स्थान में, वो कैसा है उसके बारे में बताते हैं कि एव आनंदमय। अब सुषुप्ति अवस्था में जो परमात्मा है वो कैसा है उसकी बात करते हैं, जिससे प्रज्ञान घन जो है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ कहा है एव आनंदमय, केवल आनंद। पर यहाँ क्या शब्द लिखा है भाई? आनंदमय। ये मय प्रत्यय जो है वो सिर्फ आनंद की प्रचुरता बताने के लिए ही है, आनंद नहीं कहा। क्योंकि आनंद अगर कहते तो वो तो परमात्मा का स्वरूप हो जाता था। तो परमात्मा का स्वरूप अगर ये आनंद सुषुप्ति अवस्था में ही मात्र आनंद होता तो ये परमात्मा का आनंद कैसा हो जाता? जब तक सुषुप्ति अवस्था है तब तक होता और फिर वो नाश को प्राप्त होता। यहाँ आनंदमय यानी क्या कि लगभग आनंद जैसा, करीब करीब आनंद जैसा। वहाँ आनंद से ज्यादा कुछ और नहीं है, पर वहाँ आनंद कैसा है? परमात्मा को मिलने का आनंद है? नहीं, परमात्मा को मिलने का आनंद वहाँ नहीं है। ब्रह्म का जो आनंद है वो है? नहीं, ब्रह्म का जो आनंद नहीं है। तो क्या है? तो बोले कि थोड़ी क्षण के लिए दुख का जो अभाव है, थोड़ी क्षण के लिए ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण हूँ, थोड़ी क्षण के लिए राग और द्वेष का जो अभाव है, वासना का अभाव है, चिंता का अभाव है, चंचलता का अभाव है, भोग का अभाव है, ये थोड़ी क्षण का जो अभाव है ना वो आनंदमय है। आनंद के जैसा। अब देखिए कि थोड़ी क्षण का विषयों का अभाव, थोड़ी क्षण का मन का विचार जो है, मन के विचारों का अभाव आपको आनंद के जैसा, करीब करीब परमात्मा के आनंद के जैसा आनंदमय लिखा है। सुखमय नहीं लिखा है, आनंदमय यानी थोड़ी ज्यादा डिग्री है। सुख यानी सुख के लिए पदार्थ चाहिए, पर यहाँ क्या है? बिना पदार्थ आनंद हो रहा है, पर ये आनंद अभावात्मक है, इसीलिए परमात्मा के आनंद की बात नहीं की है। आनंदमय परमात्मा के जैसा आनंद, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था हमें सबसे प्रिय है। हम सोना क्यों चाहते हैं? जागृत में अच्छे से अच्छे भोग है तो भी वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इनफैक्ट कोई अच्छा भोग मिल गया जागृत अवस्था में तो हम क्या कहते हैं कि भाई अगली रात को अच्छा सो लेने दो, कल तो ये है, कल तो ये पार्टी है, कल तो इनसे मिलना है, कल ये भोग करना है, कल ये जगह पे जाना है। तो क्या है, अगली रात को भाई जल्दी जल्दी सो जाओ तो सुबह उठ के आप फ्रेश हो जाएंगे तो ये भोग अच्छा कर सकेंगे। जागृत के सुख के लिए भी आप सुषुप्ति में सो के आते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था अत्यंत प्रिय है क्योंकि वहाँ मैक्सिमम परमात्मा के आनंद का अनुभव होता है। हालांकि परमात्मा के आनंद का अनुभव जागृत में भी होता है। जागृत में कैसे होता है? जब संपर्क होता है तब विषयों से, जब आपका संपर्क होता है इंद्रिय भोगार्थ भोग के अर्थ, तब जो एक क्षण के लिए जो आनंद प्रकट होता है वो क्षणिक होता है। स्वप्न अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था के चले जाने के बाद स्वप्न अवस्था में भी सुख और दुख का भोग होता है, आनंद क्षणिक मिलता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था का आनंद उन दो आनंद से थोड़ा, आनंद की जो गुण जो है, आनंद का क्वालिटी जो है वो तो ऐसी ही है, सरीखी ही है। पर जागृत और स्वप्न में क्या है? प्रयत्न है। जागृत और स्वप्न में स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ के भोग के तो प्रयत्न करने ही पड़ते हैं, उतना तो कर्म करना ही पड़ेगा फिर आनंद मिलेगा। यहाँ कुछ भी किए बिना वही आनंद मिलता है। तो ये जो आनंदमय है वो परमात्मा का आनंद है, ऐसा कहा है। वहाँ परमात्मा का आनंद इस प्रकार अभावात्मक मिलता है, पर जो आनंद है वहाँ ज्ञाता की तरह देखा जागृत में, स्वयं प्रकाश की तरह स्वप्न में देखा ऐसे आनंद की तरह वो घन को पूरा करना है, तो यहाँ जो आनंद जो मिल रहा है वो आनंद ही सिर्फ निकाल लीजिए तो वो परमात्मा का भाग है, इससे ये प्रज्ञान घन बनता है। ही आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। ही आनंद भुक् यहाँ आनंद भुक् क्यों कहा है? देखिए परमात्मा जो है, जब हम परमात्मा की बात कर रहे हैं कि परमात्मा इन तीनों अवस्था में मिलने चाहिए, श्रुति को इतना ही प्रूव करना है, तो परमात्मा का जो स्वभाव है वो परमात्मा का स्वभाव तीनों में झलकना चाहिए। तो जागृत अवस्था में स्थूल भूख कहा। स्थूल भूख क्यों कहा? क्योंकि वहां क्या है कंडीशन के स्थूल भोग के साथ जब संपर्क होगा, जब सन्निकर्ष होगा जागृत अवस्था में, तब जो आनंद प्रकट होगा वो परमात्मा का होगा। दूसरी तरफ स्थूल भोग का जब सन्निकर्ष होगा तब भी आनंद जागृत में प्रकट हो सकता है, ऐसे ही नहीं, ठीक है? पर प्रकट क्या हुआ? आनंद। स्वप्न अवस्था में आ जाइए। स्वप्न अवस्था में स्वप्न के जब सूक्ष्म भोग करते हैं तो वहां सूक्ष्म भोग कहा है, सूक्ष्म भोगों को भोगने वाला कहा है। तो जो सूक्ष्म भोग जो करता है, सूक्ष्म भोग करने के लिए सूक्ष्म भोग की आवश्यकता है, संपर्क जरूरी है। स्वप्न सृष्टि भले मन से बनी है पर सृष्टि की जरूर वहां रहती है। स्वप्न सृष्टि उत्पन्न होने के बाद ही संपर्क होता है और आनंद का लेश मात्र आया। वो आनंद किसका है? वो जो जागृत वाला ही, ये आनंद स्वप्न का है, आनंद नंबर टू। अब सुषुप्ति में भी परमात्मा का जो असर क्या है? परमात्मा की असर आनंद है। तो यहाँ क्या कहा है? वहाँ स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता है, यहाँ आनंद के लिए उसे क्या चाहिए? यहाँ आनंद के लिए सिर्फ आनंद ही चाहिए, आनंद भुक। इसलिए कहा है कि यहाँ आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पदार्थ का अभाव ही अपेक्षित है। पदार्थ न हो और जो आनंद है उसकी बात करते हैं, और वो आनंद का भोक्ता ये परमात्मा है। यानी परमात्मा आनंद का अगर भोक्ता है तो वो खुद को ही भुगत रहा है। पर देखिए आप क्या भोग कर सकेंगे? आपको मैं एक प्लास्टिक की चम्मच दे दूँ आप खा सकेंगे? आप प्लास्टिक की एक मिठाई दे दूँ बना के तो खा सकेंगे? आप किसका भोग कर सकेंगे? आपके स्थूल शरीर के लिए अन्न का भोग ही उचित है। अन्न के सिवा, अन्न के सिवाय की कोई भी चीज है तो आप उसका भोग नहीं कर सकेंगे।